वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद्गीता का वैसे तो ये मूल सिद्धांत है कि जीव अपने कर्मों के द्वारा कैसे वो भगवान से जुड़ सके। और यहाँ अर्जुन का जो निजी कर्म युद्ध लड़ना, जो कि अर्जुन अब दुविधा में पड़ चुके हैं, और अपने इस कर्म के द्वारा वो भगवान से जुड़ नहीं पा रहे, या धर्म से जुड़ नहीं पा रहे, या शास्त्र से जुड़ नहीं पा रहे, तो भगवान इस तीसरे अध्याय में उसकी व्याख्या देते हुए अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन न केवल अपने इंद्रियों के द्वारा कर्म में लगे, बल्कि इंद्रियों के साथ साथ अपनी चेतना, आंतरिक चेतना से अर्जुन कैसे योग में जुड़ें भगवान से, इसकी व्याख्या दे रहे हैं। और पिछले बुधवार हमने श्लोक लिया था, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। बहुत ही पावरफुल श्लोक है ये, जिसमें एक दृष्टिकोण से भगवान अर्जुन के द्वारा हम सब की पोल खोल रहे हैं, पर्दाफाश जिसे कहते हैं। तो भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति कर्म के द्वारा अपनी इंद्रियों को संयमित रखा है, वन हु हैज कंट्रोल्ड हिज सेंसरी एक्टिविटीज, परंतु यह आस्ते मनसा स्मरण, हालांकि बाहरी दृष्टिकोण से उसने अपनी इंद्रियों को संयम में रखा है, परंतु मन में वो चिंतन कर रहा है इंद्रिय के विषय भोग का। इंद्रियों को वश में रखा है, परंतु विषय वस्तु के विषय में चिंतन कर रहा है। इंद्रिय अर्थान विमूढ़ आत्मा, भगवान कहते हैं वो विमूढ़ आत्मा है, क्योंकि वो इंद्रिय के सही अर्थ को नहीं पहचान रहा। और फिर भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को क्या दर्जा दिया जाता है, मिथ्याचार स उच्यते, उसका आचरण वो केवल मिथ्या है, भ्रमित करने वाला स्वयं को और दूसरों को। तो इसका पूरा अनुवाद श्रील प्रभुपाद ने इस प्रकार से किया है, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी है। तो यहां पर भगवान ये नहीं बता रहे कि वो दूसरों को धोखा दे रहा है, सबसे पहले वो स्वयं को धोखा दे रहा है, जो केवल बाहरी रूप से दिखावा कर रहा है इंद्रिय संयम का, परंतु आंतरिक रूप से विषय वस्तु के ऊपर वो ध्यान करता है। और ब्रज बिहारी प्रभु बता रहे थे कि आपको यदि याद है, उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था पिछले बुधवार को, दैट ही जस्टिफाइज हिज रॉन्ग डूइंग्स। जब उसको वो एक फिलॉसफी में परिणित कर एक सिद्धांत बना देता है कि हाँ, मैं जो गलत कर रहा हूं वो सही है, वो है मिथ्याचारी। तो अब ये श्लोक भगवान ने कहा और इसके साथ साथ जो आज का श्लोक हम लेंगे ये एक सिक्के के दो पहलू ये समझ लीजिए, इसलिए दोनों श्लोक हम लिए हैं। तो आज का श्लोक इस प्रकार से है, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्त सविशिष्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्त सविशिष्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्त सविशिष्यते। अब यहां पर भगवान दूसरे ही श्लोक में, अगले श्लोक में अर्जुन को कहते हैं कि ठीक उस मिथ्याचारी के विपरीत असक्त सविशिष्यते, कि वो है जो सदाचारी है। एक है मिथ्याचारी और उसका ठीक विपरीत है सदाचारी जो निरासक्त है, तो वो कौन है? यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम या आरभते अर्जुन, हे अर्जुन जिसने आरंभ किया है अपनी इंद्रियों के द्वारा कर्म करना लेकिन मन से वो उससे पूर्ण प्रकार से अलिप्त है, पूर्ण रूप से वो उससे जुड़ा हुआ नहीं है या उसे निरासक्त है, तो उसके कर्म तो दिख रहा है, इंद्रियां कर्म कर रही हैं लेकिन कर्म योग में वो लगा हुआ है। जैसे आजकल ये एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं ना, रिमेन स्लिम व्हाइल ईटिंग, सुना होगा आपने कि जो मन में आए खाते रहो लेकिन हम जो आपको नुस्खा दे रहे हैं उसके द्वारा खाते खाते आप वेट लॉस करेंगे। तो भगवान उसी प्रकार से बता रहे हैं कि लगा हुआ है अलग अलग प्रकार के कर्मों में, इंद्रियों को लगाए हुए भौतिक संसार के कर्मों में लगा हुआ है लेकिन फिर भी असक्त सविशिष्यते, क्योंकि उसने अपना मन और कहीं पे लगाया हुआ। हालांकि इंद्रियां लगी हुई हैं कर्मों में लेकिन मन उसका दिव्य स्तर पर है। और पिछले श्लोक में क्या बताया है कि इंद्रियां लगी हुई हैं किसी दिव्य कर्म में लेकिन मन लगा हुआ है विषय वस्तु में। तो दोनों श्लोकों में जो जिसे कहेंगे सेंट्रल पिवट वो क्या है? माइंड। कि पिछले श्लोक में इंद्रियां लगी हुई हैं किसी सदाचार में लेकिन मन लगा हुआ है दुराचार में, आज के श्लोक में यह बताया गया है कि यदि इंद्रियां भी भौतिक कार्यों में लगी परंतु मन यदि सदाचार में है तो वो व्यक्ति असक्त सविशिष्यते। तो इसका पूर्ण अनुवाद श्रील प्रभुपाद ने इस प्रकार से दिया है, दूसरी ओर जो मनुष्य मन द्वारा इंद्रियों को वश में करके अनासक्त भाव से कर्मेंद्रियों द्वारा भक्ति भावित कर्म करता है वह अति श्रेष्ठ है। तो ये दोनों श्लोकों को यदि साथ में हम समझें आज तो 3.6 और 3.7 में भगवान ने संक्षिप्त रूप में परिभाषाएं किसकी दी हैं? 3.6 में एक मिथ्याचारी और 3.7 में एक सदाचारी। श्रील प्रभुपाद अपने प्रवचन में ये एक कथा सुनाई उन्होंने हालांकि प्रवचन नहीं था, एक मॉर्निंग वॉक था ये, जिसके अंदर प्रभुपाद ने ये स्टोरी सुनाई कि ये दो साधु थे जिन्होंने मौन व्रत धारण किया था, मौनी बाबा जिसे कहते हैं, तो मौन व्रत धारण किया और वो निकले हुए थे अपनी पदयात्रा पर, तो नदी का तट आया, इसे यहां पर आप देख रहे हैं। तो हुआ क्या कि वहां पर एक महिला वो भी उस नदी के तट पर पाई गई और ये लग रहा था कि उसे भी वो नदी पार करनी थी, लेकिन वो थोड़ी दुर्बल थी, असहाय थी, नदी पार नहीं स्वयं से कर पा रही थी। तो उसने इनमें से एक साधु को पूछा कि क्या आप मेरी मदद करेंगे इस नदी पार करवाने में। तो साधु ने इशारा किया, ऊपर चढ़ जाओ, हम क्रॉस कर रहे हैं, मेरे पीठ पे चढ़ जाओ, क्योंकि दोनों ने मौन व्रत धारण किया तो तू बोल नहीं पा रहे, तो इशारा किया पीठ पर चढ़ जाओ। तो वो महिला इस साधु के पीठ पर चढ़ गई। दूसरा साधु वो हक्का भक्का रह गया, अब मौन व्रत धारण के कुछ बोल नहीं पा रहा है, लेकिन उसके हाव भाव से तो एकदम वो कांपने लगा और वो ऐसे उसको बार बार देख रहे, क्या क्या कर रहा है तू, एक स्त्री, तू एक साधु, एक स्त्री को अपने पीठ पर उठा लिया, बोल नहीं रहा है क्योंकि मौन व्रत धारण किया। अब पूरी नदी क्रॉस की उन्होंने, वो महिला को उतार दिया, अब वो आगे चले। तो जो इनका मौन व्रत एक हफ्ते बाद टूटा, तो एक हफ्ते बाद जब मौन व्रत टूटा, टूटते ही वो जो मुहूर्त आया मौन व्रत टूटने का, तो दूसरे साधु ने, अरे तेरे को शर्म नहीं आई? उसने पूछा, किस बात की शर्म? बोला, अरे तू वो स्त्री को अपने पीठ पे उठाया। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि इस दूसरे साधु ने जवाब दिया, अरे मैंने तो जितनी वो नदी लंबी थी, कितना समय, एक 15 मिनट उसको अपने पीठ पर उठाया, तू तो एक हफ्ते तक उठाए हुए अभी तक। एक हफ्ता हो गया उसको, तू एक हफ्ते से उठाए हुए अपने मन में। तो इसे कहते हैं मिथ्याचारी, कि मन में उसके विषय में क्या क्या वो अलग अलग, पता नहीं एक हफ्ते तक क्या क्या उसने सोचा होगा। तो श्रील प्रभुपाद ने ये कथा सुनाई। अब नीति में एक मिथ्याचारी और एक सदाचारी, या एक महात्मा और एक दुरात्मा, इसकी परिभाषा दी गई है एक सुंदर श्लोक में, बहुत ही, यह हम कह सकते हैं टू द पॉइंट, इस श्लोक में बताया गया है हु इज अ महात्मा एंड हु इज अ दुरात्मा। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मन, मनस्न्यत वचस्न्यत कर्मण्यत दुरात्मन। तो कुछ आपको समझ में आया होगा, एक महात्मा और एक दुरात्मा, ये चार लाइन में दोनों का डिस्क्रिप्शन दिया है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। महात्मा कौन है कि जिसके मन में जो विचार चल रहे हैं वही वो अपने वचनों में लाता है। तो मनस एकम वचस एकम, और जो वो बोलता है वही वो करता है, कर्मण्येकम महात्मना। सो अ महात्मा इज दैट पर्सन, ही स्पीक्स व्हाट ही थिंक्स एंड ही डज व्हाट ही स्पीक्स। सिंपल डेफिनेशन बट वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो। तो अब दुरात्मा, दुरात्मा उसका डेफिनेशन इसका ठीक विपरीत, मनस्न्यत वचस्न्यत कर्मण्यत दुरात्मना। दैट पर्सन हु थिंक्स वन थिंग स्पीक्स द सेकेंड थिंग एंड डज द थर्ड थिंग इज अ दुरात्मा. तो इसलिए अगर हम इसे देखें, कोहेरेंस बताया गया है, थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस. अब कितनी बार हमें कई बार लगता होगा कि ये जो भगवान मिथ्याचारी के विषय में बताए हैं, तो ये हो सकता है कि वो आजकल कलयुग के जो तथाकथित ढोंगी साधु संत होते हैं, जो प्रदर्शित और कुछ करते हैं और उनके कार्यकलाप और कुछ होते हैं. नहीं, यहाँ पर अगर हम ये सारे जो डेफिनेशंस लें, तो रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार हम खुद सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में हम आते हैं, महात्मा की कैटेगरी में आते हैं या दूसरी. जैसे मैं जब हॉस्टल में था, तो मुझे याद है कि एक टिपिकल ये सीन अनुभव करने को मिलता कि एक कमरे में चार दोस्त बैठकर वो लोग जो बोलते हैं ना गॉसिप, गप्पा गोष्टी, उसके लिए बैठे हुए. तब वो चार जो दोस्त बैठे हैं वो लोग गॉसिप किसकी करते हैं, आजकल इंग्लिश में वर्ड भी है बिचिंग, आपने सुना होगा, बिचिंग करते हैं किसी और के बारे में. तो जो पांचवा व्यक्ति जो उस कमरे में नहीं है, अरे पता है क्या वो सुरेश क्या किया उसने, ऑफिस में क्या किया, बॉस के साथ क्या किया, उसके साथ क्या किया, इसके साथ क्या किया, मेरे साथ क्या किया. तो फिर एक शुरू करता है, हाँ, एक वो शेकुटी जलाता है, फिर सब लोग अपनी अपनी लकड़ियां डालते हैं उसमें. उसने तिली जलाई, फिर इसने मेरे तरफ से बड़ी लकड़ी, मैं बताता हूं उसके बारे में. फिर वो पूरा बीबीसी सब चालू करता है, अरे मैं बताता हूं असलियत उसकी, फिर तीसरा मैं बताता हूं ऐसे. तो चारों मिलके वो जो व्यक्ति रूम में नहीं है उसके बारे में ये सब. फिर मैंने अपने आंखों से देखा कि उसमें से एक व्यक्ति उठ के जाता है, जो भी उसकी ड्यूटी होती है, हाँ, ड्यूटी के लिए उठ के जाता है. फिर जैसे उठ के गया, अरे ये भी वैसे ही है. तो अब वो सुरेश को हटा के अब इसको लगा दिया कि ये भी वैसा ही है. और इतना ही नहीं, फिर एक और उठ के जाता है तो बाकी जो दो बच्चे हैं उसको पकड़ लेते हैं, ये तो उसका भी बाप है, दोनों का बाप है. तो लास्ट में बचता कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम मैं. कि मैं जो हूं निष्पाप हूं. तो ये जो मेंटालिटी है कि बाहर कुछ और अंदर कुछ और, तो ये जो मेंटालिटी है, ये भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं इसे मिथ्याचार बोलते हैं. तो अगर हम ये दोनों श्लोक फिर से लें, आज का श्लोक और पिछले हफ्ते का श्लोक, तो भगवान 3.6 और 3.7 ये श्लोक से क्या बता रहे हैं हमें, मटीरियलिस्टिक व्यू पॉइंट क्या होता है. ये 3.6 में भगवान ने बताया भौतिकतावादी विचार और आध्यात्मिक दृष्टिकोण. आज के श्लोक में आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या होता है. तो यदि हम और इसको एनालाइज करें, तो 3.6 के द्वारा भगवान हमें ये बता रहे हैं भौतिकतावादी विचार क्या है, एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन. मिथ्याचारी कौन है, एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन उसका एकदम स्पिक एंड स्पैन रहता है. और आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं इंटरनल कॉन्शियसनेस. तो हर समय आप देखो कि एक मटेरियलिस्टिक व्यक्ति और एक स्पिरिचुअलिस्टिक व्यक्ति में टग ऑफ वॉर क्या चलता है. ये एक है एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन और एक है इंटरनल कॉन्शियसनेस. तो ग्रॉस और सटल, स्थूल और सूक्ष्म. और ज्यादातर हम आजकल के समाज में देखते हैं कि जो एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन है उसको वैल्यू मिलता है, खाली उसी को वैल्यू मिलता है आजकल. इंटरनल कॉन्शियसनेस के बारे में कितने लोग चर्चा भी कर दे, छोड़ दिए उसको वैल्यू देना. इंटरनल कॉन्शियसनेस के बारे में आजकल चर्चा भी कितने लोग करते हैं, बस खाली पैकेजिंग, प्रेजेंटेशन वो परफेक्ट होना चाहिए. बाकी अंदर माल है कि नहीं, बर्थडे का गिफ्ट रैपिंग अच्छा होना चाहिए. अंदर क्या गिफ्ट डाला है, अरे वो तो आते रहते हैं, उसको थोड़ी देखा कितना ध्यान. बट लोग देखेंगे ना कि मैंने कितना बड़ा बॉक्स लाया और कितना अच्छा गिफ्ट रैप करके लाया हूँ, कॉस्टली उसका रैपर है और ये सब. तो ये है मेन प्रिंसिपल ये दोनों श्लोकों का. तो इसके ऊपर आप चर्चा करेंगे. इसे कहा है द लुक गुड सिविलाइजेशन. अब यहां पर आपको जो दिख रहा है ये सब प्लास्टिक के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं. एक्चुअल मैंने गूगल में टाइप किया आर्टिफिशियल प्लास्टिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, तो मेरे को भी पहले विश्वास नहीं. मैं ध्यान से देख रहा था कि तो एकदम सही दिख रहे हैं, लेकिन ये सब प्लास्टिक है. तो आपने देखा होगा कि ये जो प्लास्टिक सिविलाइजेशन है, सब चीज, इवन द स्माइल इज प्लास्टिक, मनी इज प्लास्टिक, प्रोडक्ट्स आर प्लास्टिक. तो यहां पर द लुक गुड सिविलाइजेशन. अभी मान लीजिए कि आज के डिनर में ये सब सब्जियों को काट कूट के आपके लिए तड़का मार के दें जानकीनाथ प्रभु, इतने बड़े बड़े क्या इसकी खिचड़ी बनाए, कद्दू कैरेट ये वो काट कूट प्लास्टिक सब उसको और उसका तड़का मार के. तो आपको अगर मैं पूछूं तो आप अगर उसको जब खाओगे तो आपको क्या अनुभव होगा, थोड़ा आपके रियलाइजेशंस, क्या रियलाइजेशंस आपके होंगे जब ये प्लास्टिक के वेजिटेबल्स की सब्जी आप खाओगे तो क्या अनुभव आपका रहेगा. हाँ, खाया नहीं जाएगा, सबसे पहले खाया नहीं जाएगा, अंदर खाया नहीं जाएगा. और क्या, मान लो किसी ने किसी प्रकार से अंदर डाल दिया, हाँ हथौड़ा वथौड़ा लेके अंदर डाल दिया, कैसे हजम नहीं होगा, हानिकारक है कि नहीं. तो एक है खाया नहीं जाएगा, दूसरा हानिकारक, हाँ दूसरा पॉइंट, तीसरा टेस्ट, कोई टेस्ट नहीं रहेगा उसके अंदर, फिर भूख नहीं मिटेगी है कि नहीं. ये सही बात है, भूख नहीं मिटती, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता. जैसे कि आप देखो कई बार आपने पर्सनली अनुभव भी किया होगा कि आप जब होटल में खाते हो और घर में खाते हो, प्लास्टिक छोड़ दो, होटल का खाना और घर का खाना, क्या इनमें अंतर क्या होता है. सस्ता मेरा एक मित्र वो मुझे बता रहा था, ये सच्ची घटना है, कि हमारे यूनिट के पास, दिल्ली में हमारे यूनिट के पास एक, अब पता नहीं इसको वैष्णव ढाबा क्यों बोलते हैं, उसमें से कुछ वैष्णव तो दिखता नहीं क्वालिटीज, उसको वैष्णव, सुना होगा आपने वैष्णव ढाबा, शुद्ध वैष्णव ढाबा. तो इस वैष्णव ढाबे में ये जाता था और इसका एक फेवरेट कुछ बिरयानी खाता था ये. तो इसने देखा ये बिरयानी में ये चावल सफेद होते थे थोड़े से, लेकिन सब्जियां रंग बिरंगी होती थी। तो इसको बहुत अचरज होता था कि कैसे ये लोग बना पाते हैं ऐसा, जनरली वो एक ही कलर होगा ना मिलाएंगे तो सब्जियां रंग बिरंगी कलर की और चावल अलग कलर के। तो उसे एक साल बाद पता लगा, वो मुझे बता रहा था कि वो जो वहां वो जो कुक जो बनाता था उसके लिए, वो सेठ ने उसको नौकरी से निकाल दिया, कोई झगड़ा वगड़ा हुआ तो वो कुक ने इसको आके बताया कि तुम जो वो खाते हो ना, मैं जो बनाता हूँ तुम्हारे लिए, मैं बताता हूँ क्या है वो मैं चावल, सफ़ेद चावल पके हुए रहते हैं दिन भर के, और जितने भी बाकी कस्टमर अपनी अपनी थोड़ी सब्जियां छोड़ देते हैं दिन भर, हरे कृष्णा, तो उनमें से किसी में से फूल गोभी निकाल लिया, किसी में से गाजर निकाल लिया, और आपको सब पूरे दिन भर का महाप्रसाद मिलता है, ये है। और उसके उसके लिए आपको ज्यादा पैसे भरने पड़ते। तो एकदम ये गंदा सा ऐसे ढाबा होता है, आप देखोगे कि इनका प्रेजेंटेशन भी इतना बेकार होता है, इल्यूजन कितना बड़ा है देखो, एकदम वो बाहर वो तंदूर पे लुंगी में रहेगा, कुछ ऊपर पहना नहीं है, सब वही आता घूत रहा है, पसीना सारा उसमें जा रहा है, पानी डालने की जरूरत ही नहीं है, नमक भी डालने की जरूरत नहीं है, फिर वो एक लगा हुआ तंदूर में घुसा रहा है अंदर वो, और एकदम गंदी गंदी सी सारी टेबल है, आप आके डर के मारे आके बैठते हो, वो सब एकदम वहां पे एकदम तंदूर के जैसे गर्म दिखते हैं सब लोग। फिर एक ना एकदम मोटी आवाज में आएगा, हाँ क्या बोलो, क्या खाने का, ऐसे बोलेगा, आप डर के मारे, भैया कुछ खाने को मिला, अच्छा खाने के लिए तो है खोला ही, अच्छा गर्मा गर्म क्या मिलेगा, सेठ का भेजा मिलेगा। तो पूरा पका हुआ रहता है, बताए 22 साल से संभाल रहा हूँ, 10 टेबल 22 साल से संभाल रहा हूँ, जल्दी बोलो क्या चाहिए। तो बार बार उसका ये मंत्र चलता रहे, 10 टेबल 22 साल से संभाल रहा हूँ, जल्दी बोलो क्या चाहिए। फिर वो इतना सब जगह इतना गंदा गंदा है, फिर वो एक को बोलेगा, ए अब्दुल पानी मार इसको। फिर वो अपने पांचों उंगलियां डाल के वो ग्लास के अंदर पांचों उंगलियां डाल के बोला, अरे यार उसके अंदर तुम्हारा बैक्टीरिया वायरस सब कुछ उसके अंदर तुम घुसेड़ रहा है। तो वो अब्दुल ला के पटकता है, बोलता है पी लो, जिस टांकी से लाया उसमें तो कुक नहा रहा है। तो ज्यादा देखो मत। तो ये सोचिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद फिर वो सोचता है कि 5-स्टार होटल में जाके खाएगा, तो 5-स्टार होटल में वहां पर सब आलीशान दिखता है, 10 लोग तो खाली मुस्कुराते रहते हैं 10 मिनट तक आपके पास, कोई आके पूछता नहीं क्या चाहिए, चलो मुस्कुरा रहे हैं, प्लीज प्लीज कम, बैठे हो बेचारा भूखा है, कोई पूछ ही नहीं रहा है। फिर वो अपने जितने 108 उपनिषद है उससे ज्यादा बड़ा मेनू कार्ड रहता है कि ये आपको पूल साइड खाने का, ये साइड खाने का, वो साइड खाने का। ये एक बार तो सिजलर लेके आ गया, तो उसको समझ में नहीं आया, हमारे फ्रेंड को समझ में, सिजलर आपको पता होगा, वो एकदम पट 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 आवाज करते करते वो वैसे आग निकल रही है, उसको सिजलर बोलते हैं, तो ऐसे लाया, बोला इधर ही पकाएगा क्या, बोला कच्चा लेके आ गया। तो वहां पे वो लोग इस प्रकार का प्रेजेंटेशन करते हैं कि एकदम वो बुफे होता है और ऐसे, लेकिन फाइनली उसका एंड रिजल्ट क्या होता है आप लोगों ने अनुभव किया हो कि सैटिस्फैक्शन नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन है लेकिन इंटरनल कॉन्शियसनेस छोड़ दो, होना तो छोड़ दो, गलत कॉन्शियसनेस उसके अंदर है, क्योंकि जो वो लोग पका रहे हैं पूरा वो लोग त्रस्त रहते हैं, पगार नहीं दिया 3 महीने से, पगार नहीं दिया, तीन महीने से छौंका मारा, तो सोचो कि वो छौंका मारा हुआ जब आप खाओगे तो आपके मन में भी क्या आएगा, मुझे भी पगार नहीं दिया छह महीने से, तो वो पगार पगार पगार, और फिर हम जो खा रहे हैं वो कॉन्शियसनेस हमारे अंदर, पैसा पैसा पगार। तो इसलिए ये जो आजकल सिविलाइजेशन है ये इस प्रकार से कि प्रेजेंटेशन एकदम चकाचौन रखना है बस। जैसे अभी मैं यूके से होकर आया तो वहाँ पर जो सब्जियाँ हैं अभी जैसे प्लास्टिक की सब्जियाँ जैसे दिखती हैं एकदम, मैं बता भी रहा था कि जो कोथमीर धनिया पत्ता है एकदम ऐसे चमकता हुआ, उसमें एक मिट्टी कहीं भी दिखाई नहीं देगी आपको। जैसे हम लोग यहाँ पे तो आधा किलो तो मिट्टी रहती है उसके अंदर, कोथमीर की जुड़ी आप लो कितनी मिट्टी रहती है उसके अंदर, लेकिन वहाँ पर मिट्टी बिल्कुल नहीं, एकदम प्लास्टिक जैसा चमकता हुआ वो धनिया पत्ता, लेकिन कोई रस नहीं उसके अंदर, कोई फ्रेग्रेंस नहीं, कोई स्वाद नहीं, कुछ नहीं, सब केमिकल डाला हुआ आर्टिफिशियल। सब्जियाँ एकदम ऐसे चमकती हुई दिखेंगी लेकिन कोई टेस्ट नहीं उसके अंदर। तो ये आजकल का सिविलाइजेशन 3.6 क्या है, एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन एकदम इम्पेकेबल, लेकिन इंटरनल कॉन्शियसनेस वो कोई नहीं पूछ रहा। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉस्मेटिक कॉन्शियसनेस। कॉस्मेटिक कॉन्शियसनेस क्या है, यहां पे आपको दिख रहा है असली चेहरा क्या है। तो जो असली चेहरा है आप लोग ये मैगजीन्स में और इसमें देखते होंगे सिनेमा में जो दिखते हैं ये लोग, वो वैसे नहीं होते, पूरा एक तो फोटोशॉप, अगर आपको पता है फोटोशॉप की कमाल होता है, नहीं तो फिर कॉस्मेटिक सब पूरा पीओपी चढ़ा के भेजते हैं उनको, और वो ब्यूटी पार्लर वाला भी बोलता है कि 2 घंटे की गारंटी है, ज्यादा हंसना मत, नहीं तो जो पीओपी चढ़ा है वो भी क्रैक आ जाएगा उसमें। तो ये जो कॉस्मेटिक कॉन्शियसनेस है कि कैसे एक्सटर्नली हम प्रेजेंटेबल रहें, कि हम कैसे दिखता, आजकल जब रिश्ते भी लोग जोड़ते हैं तो क्या देखते हैं, दिखने में कैसा है, सबसे पहले दिखने में कैसा है, बातचीत करने में कैसा है, कपड़े कौन से ब्रांड के पहनता है वो सब चेक करते हैं, कौन से ब्रांड के कपड़े पहनता है, ये नहीं कि कपड़े पहने कि नहीं, कौन से ब्रांड के कपड़े पहने इसने, कौन से हम बता रहे थे संडे को, एड्रेस क्या है उसका, होम एड्रेस क्या है, एड्रेस ऐसी जगह पे होना चाहिए कि हमारे स्टेटस का एड्रेस होना चाहिए उसका। एक व्यक्ति मुझे मुंबई में बता रहे थे कि एक एंगेजमेंट के बाद वो रिश्ता टूट गया क्योंकि उनको पता लगा कि जो लड़के वाले का जो घर है उसका लिविंग रूम खाली 3,000 स्क्वायर फीट है। लेकिन हमको तो 5,000 स्क्वायर फीट का लिविंग रूम चाहिए था, तो 3,000 का है, शादी कैंसिल। तो मतलब 5,000 के उसमें क्या कबड्डी खेलोगे 5,000 स्क्वायर फीट का लिविंग रूम, मतलब आजकल हमको उस पर भी हंसी आ रही कि क्या क्या लोग, क्या क्या पॉइंट्स के ऊपर लोग रिश्ते स्थापित कर रहे हैं और रिश्ते तोड़ भी रहे हैं। इट इज सो रिडिकुलस। मतलब ये सब वो व्यक्ति मुझे बता रहे थे, ये सच्ची घटना वो बता रहे हैं कि बॉम्बे में ये सब आजकल देखा जा रहा है। और वो बोलते हैं कि जब आपस में वो लोग माता पिता मिलते हैं तो वो जो हाई स्टेटस सोसाइटी के लोग, तो वो लोग पूछते हैं, वो जो लड़की का बाप है वो पूछता है कि मेरी लड़की को आप हफ्ते में कितनी बार बाहर खिलाओगे। मतलब सब पहले टर्म्स एंड कंडीशंस स्टैम्प पेपर पे, कितनी बार बाहर खिलाओगे, कहाँ कौन से होटल में खिलाओगे, इसको तो बनाने नहीं पड़ेगा ना रोज घर पे, नौकर चाकर कितने हैं, ये सब चीजें। तो आजकल ये सब जो ये कॉस्मेटिक अरेंजमेंट सब जगह हुआ है कि कैसे हम बस अपना बाहर का प्रेजेंटेशन ठीक रखें, बाकी उसके अंदर का कैरेक्टर क्या है, उसके वैल्यूज क्या हैं। एक पत्नी अपने पति से पूछती है, सुनो जी, आपको मेरी ब्यूटी में और मेरी ब्रेन में ज्यादा अच्छा क्या लगता है, बताओ। मेरी ब्यूटी में, मेरी ब्रेन में, दोनों में से ज्यादा अच्छा क्या लगता है, सच सच बताना। सच सच बताओ, मुझे तुम्हारे मजाक करने की आदत बहुत अच्छी है। तो आजकल ना तो ब्यूटी है ना ब्रेन है, दोनों मजाक बन के रह गए हैं। तो बस कैसे बाहर से प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए कि दिखने में कैसे, बैंक बैलेंस कितना है, घर कहाँ पर है, बातचीत करने में कैसे हैं, एजुकेशन कितना है, फॉरेन जाने के आसार हैं कि नहीं, ये सारी चीजें। तो इसे कहा गया है कॉस्मेटिक कॉन्शियसनेस, और ये कॉन्शियसनेस हर चीज में फिर दिखता है। हम हर चीज में, चाहे हम अध्यात्म का भी पालन करना शुरू करें तो उसमें भी हम केवल इसी पर जोर देते हैं कि हम कैसे अच्छे अध्यात्मवादी दिख सकें। दिखने में हम अध्यात्मवादी दिखने चाहिए, कि आजकल लोग, ये भी एक फैशन हो गया कि आप कौन सा योगा फॉलो करते हैं, तो लोग अगर पूछेंगे सोसाइटी में, किसी पार्टी में, कि मैं कौन सा योगा फॉलो करता हूं, तो फिर कोई स्टैंडर्ड का योगा होना चाहिए, पावर योगा ये वगैरह, उसके अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड नाम कर दिए उन्होंने कि इस योगा क्लब में मैं जाता हूँ, इस स्टूडियो में जाता हूँ, या इस अध्यात्म का पालन करता हूँ। तो इसलिए जो भगवान बता रहे हैं कि सिंपली ट्राइंग टू प्रेजेंट वन सेल्फ, ये कॉस्मेटिक कॉन्शियसनेस क्या है, मिथ्याचार का एक बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्जन है, कि जो आपकी सुंदरता है नहीं वो दिखाओ। क्या है कि आज हमारे प्रभु जी बता रहे थे कि फेयर एंड लवली जो क्रीम है, कि बहुत कम हैं जो उसमें से लगा लगा के घिस घिस के थोड़ा फेयर हुए होंगे, पता नहीं हुए हैं कि नहीं हुए, लेकिन फिर वो ब्यूटी पार्लर में जाकर, क्या कहते हैं उसको, ब्लीच, पूरा व्हाइट वॉश कर बाहर आना, तो अंदर से है स्किन काला, जैसे बारिश हो जाएगी तो समझ में आ जाएगी असलियत क्या है। लेकिन कुछ घंटों के लिए, जब तक दिखाना है, पार्टी चल रही है, तब तक के लिए तो जो मैं नहीं हूं वो दिखेगा, इसे कहते हैं मिथ्याचार। जो मैं नहीं हूं वो दिखाना, वो मिथ्याचार है। तो ये हर एक हमारे आजकल मॉडर्न सिविलाइजेशन के एस्पेक्ट में दिखाई देता है, कॉस्मेटिक कॉन्शियसनेस। इसलिए जो हम गीता कोर्स में कहते हैं कि क्या है मॉडर्न एज, सिंपली पॉलिशिंग द केज, ये स्टोरी पिंजरा आणि पोपट, कि ये वृद्ध महिला जो कि एक राजा की मां थी, तो राजा को भेंट में एक बहुत ही विशेष स्पीशी पैरेट का मिला, लेकिन सोने के पिंजड़े में, तो उसने अपनी माँ को लाके दिया देखभाल करने के लिए। तो उसकी माँ रोज क्या करती, सोने का पिंजड़ा है तो पिंजड़े को घिसती, बस पिंजड़े को घिसती, तो घिस घिस के पिंजड़े को घिसा, एक महीने बाद देखा अंदर जो तोता था मर गया, उसको कुछ खिलाया नहीं। तो ये अंदर क्या है, कॉन्शियसनेस, और बाहर केज क्या है, ये हमारा शरीर। तो हो क्या रहा है आजकल, बस ये करो वो करो, ये फिटनेस, ये ब्यूटी पार्लर, ये कॉस्मेटिक अरेंजमेंट, खाली पिंजड़े को घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो, ये क्रीम से, ये अलग अलग जगह जा जा के बस पिंजड़े को घिसो, लेकिन अंदर बेचारा जो तोता है, आत्मा है, वो तड़प रहा है, उसको एक बूंद पानी नहीं, एक घास खाना नहीं, कुछ नहीं दे रहे। तो ये आजकल की सिचुएशन है, और इसलिए हम गीता के सिद्धांत को लेके हमारे एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेमिनार में ये एक स्लाइड दिखाते हैं, सीइंग द इनविजिबल। भगवान यहां पर अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि जो मन अलग अलग प्रकार से तुम्हें मिथ्या में डाल रहा है उसको देखो अर्जुन, तुम ये बाहरी ये सब सेना खड़ी है, मैं क्या करूंगा, उसके बाद बाहरी रूप से क्या होगा, ये सब मत देखो, सीइंग द इनविजिबल। तो इसमें हम ये पॉइंट बोलते हैं कंटेनर वर्सेस कंटेंट। तो यहां पर एक पात्र है, कंटेनर सोने का, गोल्ड का, लेकिन अगर अब सोने का पात्र इतना चमचमाता ये पात्र, लेकिन अगर इस पात्र को किसी ने थूकदान के रूप में इस्तेमाल किया है तो उसका कंटेंट क्या मिलेगा आपको, समझ गया? If a golden container is used as a spittoon, although the container might be dazzlingly shining, but what you will see inside the content is all spit, obnoxious, filthy. तो वैसे ही आजकल आप देखो ये जो जो अच्छे दिखने वाले celebrities, इनके चमचमाते container, क्या है, container चमचमाते हैं, content? अरे कंटेंट किसने पूछा है, कंटेनर देखो उसमें मजा आ रहा है, लेकिन कंटेनर अपना कंटेंट अगर उस प्रकार का है तो ये डिफरेंस बताया गया। फिर ये एक स्टोरी कि एक फुग्गे बेचने वाला, गुब्बारे बेचने वाला गुब्बारे बेच रहा था, एक लड़का उसने एक गुब्बारा खरीदा और उसने कहा कि इसमें से जो एक रंग का गुब्बारा है ना वही ऊपर आसमान में उड़ता है, बाकी रंग के गुब्बारे नहीं उड़ते, तो खाली ये रंग का गुब्बारा लेना। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि कौन से रंग का गुब्बारा वो ऊपर उड़ेगा और कौन से रंग का गुब्बारा नहीं उड़ेगा, ये रंग डिसाइड करता है या गुब्बारे के अंदर जो हीलियम है वो डिसाइड करेगा? Similarly, what will decide whether we will go up in our life, just like the balloon, not the color of our skin. Just like the color of the balloon will not decide whether the balloon will go up or will not. It's the content inside which makes the balloon go up. तो फिर अगर हम इन दोनों examples को लें तो भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं, कंडीशन वर्सेस कॉन्शियसनेस। एज अ ह्यूमन बीइंग वी शुड बी मोर कंसर्न्ड अबाउट अवर कॉन्शियसनेस देन जस्ट अवर फिजिकल कंडीशन, एज टू हाउ एम आई लुकिंग, हाउ प्रेजेंटेबल आई एम एंड ऑल दिस स्टफ। द होल भगवद गीता इज बेस्ड ऑन व्हाट इज योर कॉन्शियसनेस, not just your physical condition. भगवान ने बिल्कुल अर्जुन जो वेपतुश्च शरीर ये सब जो हो रहा था अर्जुन को पिछले अध्याय में, भगवान ने बिल्कुल उसके बारे में परवाह ही नहीं की। ये नहीं कि अरे अर्जुन पहले तुम संभालो, एक ग्लास पानी पियो पहले, हाँ डॉक्टर को बुलाता हूँ फिर, नहीं ये सब नॉनसेंस है तुम्हारा फिजिकल कंडीशन, ये तुम रो रहे हो बिलख रहे हो जिसके लिए विलाप कर रहे हो ये सब मिथ्या। ये सब देखने के बाद भगवान ने अर्जुन को कहा अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञा वादांश भाषसे, यू आर अ फूल अर्जुन, दैट यू आर क्राइंग एंड लैमेंटिंग फॉर समथिंग विच इज नॉट वर्दी एट ऑल, गेटिंग कैरिड अवे बाय योर फिजिकल कंडीशंस, नॉनसेंस। इतना स्ट्रांगली भगवान कॉन्शियसनेस के ऊपर जोर दे रहे थे। तो कहां आजकल ये कॉन्शियसनेस के ऊपर कि हमारे हमारी आंतरिक स्थिति क्या है, कहां इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है, बल्कि उसका ठीक विपरीत जो हमने देखा, द लुक गुड सिविलाइजेशन द कॉस्मेटिक कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस है लेकिन कौन सा, कॉस्मेटिक कॉन्शियसनेस। ये भी हम सिक्स इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द पेंसिल, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा हमारे सेमिनार्स में कि पेंसिल जिसने इसका आविष्कार किया, निर्माण किया, उसने पेंसिल को निर्माण करने के पश्चात 6 आदेश पेंसिल को दिए. फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, योर रियल वैल्यू लाइज विद इन यू. द सेकेंड इंस्ट्रक्शन, ओनली वेन द विद इन कम्स विदाउट विल यू बी वैल्यूएबल. थर्ड, फॉर दैट विद इन टू कम विदाउट द प्रोसेस विल बी वेरी पेनफुल. फोर्थ, ओनली वेन यू विल बी इन द हैंड्स ऑफ अ प्रॉपर राइटर विल यू बी हैविंग एनी इम्पैक्ट. फिफ्थ इंस्ट्रक्शन, दैट वेर एवर यू विल गो यू विल लीव अ मार्क बिहाइंड यू. एंड सिक्स्थ इंस्ट्रक्शन, इवन इफ यू कमिट मिस्टेक्स सो माई डियर पेंसिल यू कैन इरेज इट एंड री राइट द राइट स्क्रिप्ट. द सिक्स्थ इंस्ट्रक्शन. तो इसका जो पहला इंस्ट्रक्शन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कि जो पेंसिल है इसका सबसे मूल्यवान भाग क्या है, उसके अंदर है. वैसे ही हमारा सबसे मूल्यवान यदि मनुष्य जीवन का अस्तित्व वो हमारे इस शरीर के अंदर है, हमारी चेतना, आवर कॉन्शियसनेस. और इसके ऊपर भगवान बता रहे हैं कि ये जो दो श्लोकों में डिफरेंस क्या है, मिथ्याचारी और सदाचारी में डिफरेंस क्या है, कॉन्शियसनेस. दैट इज अ मार्केबल डिफरेंस. अब पता नहीं आपने इफेक्ट सुना है क्या, टर्माइट इफेक्ट, लेकिन अनुभव किया होगा घरों में. क्या कहते हैं, दीमक, टर्माइट्स. तो टर्माइट इफेक्ट कहते हैं कि कोई यदि फर्नीचर है आपके घर में, यदि कोई लकड़ी का खंबा है या टेबल चेयर है, तो ये टर्माइट्स करते क्या हैं, ये बाहर से उसको एज इट इज रखते हैं, अंदर से उसको खा लेते हैं, अंदर से उसको खा लेते हैं. और टर्माइट इफेक्ट क्या है कि बाहर से वो दिख रहा है कि एकदम खड़ा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक फूंक मारो कि सब धराशायी होकर नीचे गिर जाएगा. तो वैसे ही जिस व्यक्ति के अनर्थों ने अंदर से उसको खा लिया है, वो व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ दिखेगा, लेकिन माया देवी का एक झोंका और जैसे कि वो एक फूंक मारो पूरा वो टेबल गिर जाएगा नीचे, वैसे माया देवी का एक झोंका और जो मिथ्याचारी है वो नीचे पतन हो जाएगा उसका. तो इसे कहते हैं टर्माइट इफेक्ट. तो इसका टर्माइट इफेक्ट का एक गहरा मुद्दा ये है कि तुरंत समझ में नहीं आता है कि अंदर से वो खोखला हो रहा है, तुरंत समझ में नहीं आता, धीरे 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 धीरे. तो वैसे ही ये जो मिथ्याचार की जो भगवान ने व्याख्या की है, वो व्यक्ति तुरंत समझ में नहीं आता, धीरे 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 उसके मन में ये सब पनपता रहता है, जैसे कि वो दीमक खाता रहता है. और इसी के साथ साथ एक और इफेक्ट बताया है, द पंक्चर्ड टायर इफेक्ट. अब ये तो आपको दिख रहा है कि पूरा फ्लैट टायर हो गया, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होती है, आप चला रहे हो गाड़ी एकदम मस्ती में, आपको क्या पता रास्ते पे क्या अंदर घुसा है टायर के अंदर, कहीं इतनी सी कील या कुछ कांटा अंदर घुस गया और उसने छोटा सा छेद किया, तो तुरंत वो फ्लैट टायर नहीं होता है. आप चला रहे हो मस्ती में, धीरे 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 उसकी हवा निकलती रहती और बहुत समय बाद फिर समझ में आता है कि अरे ये तो पंचर हो गया. तो कई बार एक छोटी जैसे हमने शायद ये श्लोक लिया था, वो बोट का एग्जाम्पल भगवान देते हैं, दैट व्हेन द सेंसेस दे कंटेम्पलेट ऑन वन सेंस ऑब्जेक्ट, that one sense object can drive away the entire boat, just like wind sweeps away the entire boat. तो वैसे वो एक छेद छोटा सा वो टायर के अंदर वो गाड़ी रुका सकते आगे चल के. तो हमें ये नहीं समझना चाहिए, अरे इतना सा तो छेद है, क्या इतनी बड़ी गाड़ी, इतना सा छेद है, क्या फर्क पड़ने वाला, चलो चलाते रहें. नहीं, आप देखो पंचर वगैरह ठीक कैसे करते हैं आजकल, पता नहीं कैसे करते। पहले हम लोग वो साइकिल लेके जाते थे तो पानी का वो टब रहता था, वो टब के अंदर डालेगा सब पूरा टायर हवा भर के, पहले हवा भरेगा फिर उसमें से बुड़ 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 इधर तो यहाँ पे छेद है, फिर उसको वहां पे वो लगाएगा। तो हालांकि समझ में दिखता नहीं है, उसको टेस्ट कैसे करता है वो, पानी में डाल के सामने से वो टायर ट्यूब दिखाओगे उसको समझ में नहीं आएगा। तो वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि बाहर से एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन से समझ में नहीं आएगा कि कहां पर खिला घुसा है, कहां पर दीमक अंदर गया है। तो ये है दो इफेक्ट, टर्माइट इफेक्ट और पंक्चर्ड टायर इफेक्ट। नीति में ये एक स्टोरी बताई गई है कि एक राज्य में राजा वो लोमड़ियों से बहुत प्रेम किया करता था, फॉक्स। तो हुआ क्या कि एक नया नागरिक उस राज्य में आया और उसने जब लोमड़ी पकड़ी, उसके घर में लोमड़ी आती थी क्योंकि राजा जो लोमड़ी से इतना प्रेम किया करता था, तो कोई भी नियम था कि कोई किसी लोमड़ी को मार नहीं सकेगा। तो इसके घर में जैसे लोमड़ी आया तो इसने लोमड़ी को पकड़ लिया और फिर इसको जब बताया, अरे लोमड़ी अपराध कर रहे तुम, और उसी समय राजा अपने मंत्रियों के साथ वो सैर पर निकला तो आया सामने। तो इसने क्या किया, राजा को देखा तो लोमड़ी को अपने कुर्ते के नीचे छुपा दिया, उसका मुंह दबा के ऐसे छुपा दिया कि राजा चला जाएगा फिर मैं देखूंगा ये लोमड़ी को। तो राजा उधर रुक गया और राजा अब इसी से बात करना शुरू किया, शर्ट के नीचे लोमड़ी को छुपाए हुए। तो राजा उसको पूछता, और कैसे नए दिख रहे हो तुम यहाँ पे, हाँ कैसे हो, क्या करते हो, तो बता रहा हूं पकड़ा हुआ लोमड़ी को, सब बता रहा है। जैसे होता है ना कहीं किसी को प्रेशर आया और बीच में कोई पकड़ लेता है तो उसकी हालत कैसी होती है, तो पकड़े हुए उसको, हाँ सब आप ही की देन है सब कुछ, जय हो आपके जय हो, ऐसे जय जय चलो चलो जय हो आप जाओ चलो अभी, मन में ये सब बोल रहा। तो राजा 15 मिनट तक उससे बातचीत करके जब गया तब इसने उस लोमड़ी को निकाला तो क्या देखता है कि वो लोमड़ी ने उसको सब खा लिया था, यहाँ पे उसकी आंतड़ियां वगैरह सब कुछ उस लोमड़ी ने खा ली थी। तो नीति में ये स्टोरी दी गई है कि जो व्यक्ति बाहर से केवल दिखाता है लेकिन ये सारे अनर्थों को लोमड़ी की तरह अंदर दबा के रखता है तो लोमड़ी क्या करती है, धीरे 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 सब कुछ उसके अंदर का खा लेती है। तो ये है स्टोरी ऑफ द स्लाई फॉक्स। अच्छा, अब इसके विपरीत एक थेरेपी है, अगर यहां पर कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं तो, कोई है आयुर्वेदिक डॉक्टर, क्या है लीच थेरेपी को बता सकेगा, क्या है लीच थेरेपी, रिमूव्स द इन्फेक्टेड ब्लड। किसी ने लीच थेरेपी किया है यहां पर, एनीवन हैज टेकन अप लीच थेरेपी, अच्छा आपने। अब आयुर्वेद के जो अधिष्ठात्रा देव धन्वंतरी, आप उनके फोटो अगर देखो तो धन्वंतरी एक हाथ में लीच को लेके हैं, एम आर राइट, धन्वंतरी के एक हाथ में लीच है। तो ये लीच थेरेपी क्या है, ये बिल्कुल विपरीत है। अब देखो जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि दिखने में आपको लग रहा होगा कि क्या ये कौन सा कॉस्मेटिक तरीका है कि अपने चेहरे के ऊपर ये सब लीच वीच लगा लेना, लेकिन ये लीच एक्चुअली करता क्या है, ये जो कॉस्मेटिक्स करते क्या है कि अंदर की गंदगी को ऊपर से सब प्लास्टरिंग लगा के छिपा देते हैं, और लीच उसका उल्टा करता है कि अंदर की गंदगी को ये सोख लेता है, पूरा जो अपना गंदा खून है पूरा जो बैड ब्लड है वो पूरा बैड ब्लड ये लीच ये सोख लेता है. तो एक्चुअली भगवत गीता का जो प्रोसेस है कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस है क्या? लीच थेरेपी है. इसलिए आप देखो भक्त लीच के जैसे चिपक जाते हैं. एक बार आप उनसे थोड़ा सा फोन नंबर एक्सचेंज कर लो फिर छोड़ते नहीं. प्रभु जी वेडनेसडे प्रोग्राम आ नहीं रहे, संडे प्रोग्राम आ नहीं रहे, तो हमको क्या लीच के जैसे लगते होंगे. लेकिन वो कर क्या रहे हैं? पूरा जो गंदगी है वो बाहर निकाल रहे हैं. तो क्वेश्चन ये है, अब भगवान हमको पूछ रहे हैं कि क्या हमको वो कंफर्टेबल ब्यूटी पार्लर में जाके अपना कॉस्मेटिक अरेंजमेंट कराना है या डॉक्टर के पास जाके लीच लगवाना है. हाँ, बहुत भयावह लगता है लीच लगाना, बाप रे. नहीं नहीं नहीं, उधर एसी ब्यूटी पार्लर में बैठ के वो सब जो भी पीओपी वगैरह लगाना वो अच्छा लगता है, वो सब दिखने में अच्छा है. हाँ, कोई उसमें तकलीफ नहीं, मजा भी आता है, मसाज वजा करते हैं, ये पेडिक्योर मैनिक्योर ये वो. हालांकि क्योर कुछ नहीं हो रहा है, नाम दिया गया है पेडिक्योर, उल्टा बीमारी बढ़ रही है. तो ये इसका सिद्धांत क्या है, हमको हमको सिद्धांत समझना है. ये नहीं कि कल से अगले वेडनेसडे से सबको लीच लगाया जाएगा यहाँ पे. इसका सिद्धांत हमको समझना है. सिद्धांत ये है कि गंदगी अंदर से निकालनी है. असली गंदगी अंदर की है. जो रक्त है वो प्रदूषित हुआ है, जो कॉन्शियसनेस है वो प्रदूषित है. तो ये हरिनाम संकीर्तन भी उस प्रकार से है, लीच थेरेपी के इस प्रकार से है कि हमारे सारा सारी जो गंदगी है चेतो दर्पण मार्जनम वो सब कुछ बाहर निकालता है. तो जब हम इस चेतना में अपना जीवन जिएंगे तो ये मुझे एक स्टोरी इसके संदर्भ में याद आई. बचपन में हमको हमारे फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर ने सुनाई थी स्टोरी ऑफ अ कॉबलर. तो ये इस प्रकार से है कि एक राजा अपने बहुत धार्मिक प्रकार का वो राजा था, तो रोज वो ग्रंथ अध्ययन करता. तो उसने एक दिन पढ़ा शास्त्रों में कि यदि आध्यात्मिक उन्नति सही मायने में करनी है तो किसी प्रामाणिक साधु का संग करो. और बार बार उसमें लिखा गया प्रामाणिक साधु का संग, केवल साधु संग नहीं, प्रामाणिक साधु का संग जो सदाचारी हो. तो इसने अपने मंत्री को बुलाया, जो मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री को बुलाकर कहा कि भाई मुझे एक प्रामाणिक साधु लेकर आओ, संग करना है मुझे. अब राजा है वो सब कुछ ऐसे ऑर्डर से ही करता है. तो मुख्यमंत्री को कहा प्रामाणिक साधु खड़ा करो मेरे सामने. तो मुख्यमंत्री अभी अभी एक तो साधु मिलना मुश्किल है, ऊपर से प्रामाणिक साधु और भी मुश्किल. तो गया एक हफ्ते 15 दिन, वापस आया नहीं मिला कोई. तो राजा ने फतवा दे दिया कि 5 दिन में अगर तू प्रामाणिक साधु को नहीं लाता है तो तेरी नौकरी गई, और अगर तू ले आता है तो तेरे को मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट में दूंगा. तो अब ये कंडीशन रख दिया 5 दिन में करना है, और कर दिया तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं, नहीं तो फिर सब कुछ खत्म. तो घूमता घूमता, लेकिन प्रामाणिक साधु होना चाहिए. तो उसने भी शास्त्र पढ़ा कि प्रामाणिक साधु के लक्षण क्या होते हैं. तो सारे लक्षण वगैरह पढ़कर देख रहा था कौन कौन प्रामाणिक है, नहीं कहीं प्रामाणिक साधु नहीं मिला. तो उसे एक मोची दिखा जो साधु की तरह दिख रहा था, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बस मोची का काम. तो उसने सोचा कि राजा कितना संग करेगा, 5 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना. तो चलो इसको मैं बोल देता हूं कि तू ढोंग कर प्रामाणिक साधु होने का, तो मुझे तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी, मैं आधी इसको दे दूंगा. तो ऐसे बोल के उसने मोची को कन्विंस कर दिया, और मोची को ये गेरुआ वस्त्र धारण करवा दिया और बोला कि भाई तू दिखने में एकदम साधु जैसा भी दिख रहा है और राजा तेरे को टेस्ट करेगा। तो राजा कैसे टेस्ट करेगा कि तू प्रामाणिक है कि नहीं, तेरे को कुछ है ना ऐश्वर्य देगा, कुछ धन ये सब कुछ देगा, प्रलोभन देगा, सब मना कर देना, तू सब चीज के लिए मना कर देना क्योंकि मैं तेरे को बाद में देने वाला हूं। तो ऐसे बोल के लेकर आ गया, मिल गया प्रामाणिक साधु। तो राजा दंडवत करने लगा, है कि मोची वो, तो राजा दंडवत कर रहा है उसको, तो उसको समझ में नहीं आया कि राजा नीचे क्यों गिर गया, क्या ढूंढ रहा है नीचे। और फिर राजा ने पूछा कि कुछ ज्ञान की बातें आपसे सुनना चाहेंगे। उन्होंने नहीं, मौनी बाबा है, बात नहीं करते। तो फिर अच्छा मौनी बाबा है, तो बहुत बड़े विरक्त हैं, बात भी नहीं करते। तो फिर उन टेस्ट करने के लिए राजा ने कहा कि आपको मैं मेरे महल में एक कुटिया दे दूंगा, आप महल में रहिए ताकि आपका संग मिलता रहे मुझे। तो अभी मोची ने, अरे यहाँ तो महल में मिल रहा है रहने के लिए, तो मंत्री की ओर देखा, मंत्री बोल रहे हैं मना कर, नहीं उसे मना कर दिया ऐसे, नहीं बिल्कुल नहीं। फिर एक थाली भरकर स्वर्ण मुद्राएं, तो देखा स्वर्ण मुद्राएं, तो मंत्री की ओर देख रहा है, मंत्री ऐसे करता है, नहीं देखूंगा भी नहीं इसकी ओर। तो इतना सब कुछ होने के बाद फिर हो गया, राजा संतुष्ट हो गया, राजा प्रसन्न हो गया मंत्री के ऊपर कि हाँ तूने एक प्रामाणिक साधु से मिलाया मुझे। और फिर राजा ने इनाम दे दिया मंत्री को। अब मंत्री ने सोचा सब कार्यक्रम तो पूरा हो गया, अब उसको दूं कि नहीं दूं, तो अगर मैं उसको नहीं दूंगा तो वो आ जाएगा अपने मोची के वेश में, फिर पर्दा मेरा फाश हो जाएगा, मेरी पोल खुल जाएगी, तो मैं दे देता हूं उसका मुंह बंद करने के लिए। तो फिर वो जाता है ढूंढने के लिए उस मोची को, उसको 500 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए, लेकिन वो मोची कहीं दिखता नहीं, उसकी झोपड़ी में नहीं, कहीं नहीं, उस गांव में भी नहीं दिखता। तो पूछता कि ये गया कहाँ, अरे यहीं यहाँ पर तो वो मोची का काम किया करता था इस पेड़ के नीचे। तो गांव वालों ने कहा जब से वो पहन के गया है गेरुआ वस्त्र आपने जो पहना है, उसके बाद आया नहीं वो, तो ये इसमें पावर बहुत रहता है। तो उसके बाद आया नहीं, तो फिर अब ये डर गया कि आया नहीं मतलब क्या राजा के पास तो नहीं चला गया। तो मंत्री भी परेशान, ढूंढते फिर उसने देखा कि उस गांव के उस प्रांत के सीमा पर एक पेड़ के नीचे ये मोची अब ध्यान में बैठा हुआ। तो अभी इसका जो फाइनल क्लाइमैक्स स्टोरी का अभी आया, तो जाता उसके पास वो स्वर्ण मुद्राएं लेकर, तो ये बोलता है कि नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए अभी। बोला क्यों, तुमको ये स्वर्ण मुद्राएं नहीं चाहिए, अरे तो हमारा तो एग्रीमेंट था। तब वो कहता है कि मुझे एक साक्षात्कार हुआ कि मैं एक ढोंगी साधु बनकर उस राजा के पास गया और इतना धन दौलत ऐश्वर्य उसने मुझे दिया, तो मुझे ये साक्षात्कार हुआ कि मैं अगर असली प्रामाणिक साधु बनूं तो मुझे भगवान का ऐश्वर्य क्यों नहीं मिलेगा। अगर एक ढोंगी साधु बनने से मुझे इतना ऐश्वर्य यहां पर इस संसार में मिल रहा है, तो मैं एक प्रामाणिक साधु बनूंगा तो जो मैंने सुना है इन साधुओं के बारे में, तो उनको जो ऐश्वर्य आध्यात्मिक भगवान का वैकुंठ का मिलता है, वो इसलिए तो ये सबको त्यागते हैं। तो ये उसका रियलाइजेशन था। तो यही भगवान आज के श्लोक में बता रहे हैं कि हे अर्जुन, कैसे मिथ्याचारी की उस स्थिति से ऊपर उठकर बचकर तुम सदाचारी बनो। और इसलिए टेक होम मैसेज क्या है, नो मैटर हाउ गुड आर इंटेंशंस आर, द वर्ल्ड जजेस आर प्रेजेंटेशन। नो मैटर हाउ गुड आर प्रेजेंटेशन इज, गॉड जजेस आर इंटेंशन। So the question is that ultimately we have to face God. So what we should work upon? Whether we should simply work upon our presentation or we should work upon our intentions. Finally, man sees the result where God sees the effort. Man sees the lips whereas God sees the heart. So this is the sum and substance of these two verses. 3.6, Krishna speaks about Mithyachar, and 3.7, Krishna speaks about Sadachar. And 3.8, अगले हफ्ते भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, हे अर्जुन, तुम अपना नियत कर्म करो बस, इतना तुम बड़ी बड़ी फिलॉसफी झाड़ रहे हो ये धर्मशास्त्र के अनुसार, इसके अनुसार, जस्ट डू योर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, तुम्हारा नियत कर्म करो, उसी में तुम्हारा उद्धार और इस पूरे समाज का उद्धार छिपा हुआ है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. श्रील प्रभुपाद की जय.